प्रकृति गुणे कौन विहारती विज्ञात प्राक सिद्धाम गुणा समृत आप सब देख सकते हो या मने स्वम अग्रायो विकारे प्रकृते गुणे ओम विहारी हति विज्ञानसम प्रक्षिदम गुण समृता या मने स्वम अग्रायो विकारे प्रकृते गुणे ओम विहारति विज्ञातम प्रक्षित नाम गुण समृतः माता जी शब्द अर्थ
गृह्यमाणे दृश्य होने के कारण प्रकृति से बने शरीर को स्वीकार करने से त्वम आप अग्रह्य प्रकृति से निर्मित शरीर में ही समित न रहकर विकारै ही मन द्वारा विचलित प्राकृतैः गुणैः प्रकृति के गुणों द्वारा सत्वगुण रजगुण तथा तमोगुण कह कौन है नु उसके बाद इह इस जगत में अर्हति योग्य होता है विज्ञातुम जानने के लिए प्राक सिद्धम सृष्टि के पूर्व उपस्थित गुण संवृत भौतिक गुणों से आच्छन्न होने के कारण अनुवाद हे प्रभु आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके
अनुवाद दोहराइए
कृपया मेरे पीछे दोहराइए हे प्रभु आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाले ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। तात्पर्य कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कृष्ण के नाम गुण तथा रूप परम सत्य है जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है, अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीर में बंदी हैं, भला वे कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं, किंतु सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। जो भक्ति में लीन हैं, उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 18 अध्याय 15वें श्लोक में भी स्वयं भगवान ने की है। भक्त्या माम अभिजानाति, कभी कभी भगवद्गीता में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों में का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वह उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही समझ सकता है। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जा सकता तो क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार की किसी भी वस्तु को देखकर कृष्ण को समझा जा सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सारी वस्तुएं कृष्ण पर टिकी हैं और सारी वस्तुएं कृष्ण हैं, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इनकी अनुभूति नहीं हो पाती। तो हम 30 और 31 का भाषांतर पढ़ेंगे। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं, आप ही हर जीव का शरीर प्राण अहंकार तथा इंद्रियां हैं, आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं, आप काल तात्कालिक कारण और तीन गुणों सतो रजो तथा तमोगुण वाली भौतिक प्रकृति है, आप इन भौतिक जगत के आदि कारण हैं, आप परमात्मा हैं, अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। तात्पर्य श्रीपाद मध्वाचार्य ने वामन पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। रूप्यत्वात् तु जगत रूपम विष्णोः साक्षात् सुखात्मकम् नित्यपूर्णम समुद्दिष्टम स्वरूपम परमात्मनः।
ओम ज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितानि येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्य मनोवेष्टम् सर्वमेव भूतले स्वयं रूपा कदा वयम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां सगाजतम् सद्वैतं सवधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदा सागर। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूर्यदेवी परमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रीतानुभवनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य। ज्ञामने सम अग्राय विकारे प्रगति गुणे कौन इनाति विज्ञातम प्रक्षदेम गुना समता। तो अब दसवें स्कंद में भगवान की लीलाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो और इन लीलाओं के अध्ययन के द्वारा आप देख सकते हो कि परम भगवान क्या है, पूरे रूप से ट्रांसेंडेंटल है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम एमामिता तथा त्यक्त देहम पुनः जन्म। भगवान जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में और जब उनके माता पिता ने विनती की कि साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो तुरंत ही उन्हें साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये भी अद्भुत है। जैसे कि इस समय आप यमुना अर्जुन के उद्धार के विषय में पढ़ रहे हो, ये भी दामोदर लीला बुलाई जाती है। दामोदर लीला के दो भाग हैं। पहला भाग था यशोदा माता ने कैसे प्रयास किया शैतान बच्चे को शिक्षा देने के लिए। पड़ोस की जो गोपियां थीं वो बकायदा शिकायत करते रहती थी यशोदा माया से, आपका बेटा हमारे घर में आकर मक्खन चुरा लेता है, घी चुरा लेता है, दही चुरा लेता है। तो यशोदा माता कहती थी, वो तुम्हारे घर से क्यों चुराए, मेरे घर में क्या कमी है। मेरे पति के पास 9 लाख गायें थे, 9 लाख, और हर गाय सजीवी थी गहनों के साथ। तो यशोदा माता कहती थी, मेरा बेटा आपके घर में क्यों आएगा। उनके हृदय में थोड़ा शक था, शायद ये जो पड़ोस के घरों में मक्खन जो है ज़्यादा टेस्टी होगा, तो शायद मेरा बेटा वहाँ खींचा जाता है। तो उन्होंने प्रयास किया और भी मीठा मक्खन बनाने के लिए। तो जब यशोदा माता ने देखा कि बेटा बड़ा शरारती हो गया है, तो वो गई उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए। और माँ ने देखा कि बेटा उनकी लाठी से डर रहा है, तो माँ ने सोचा ठीक है, क्योंकि वो लाइट पनिशमेंट, हल्की सजा, उनको बांध देंगे रस्सी के साथ। फिर रस्सी के साथ जब बांधने गए तो क्या महसूस हुआ, सारे रस्सियों को जोड़ने के पश्चात भी वो भगवान को बांध नहीं पाए। और फिर जब भगवान ने देखा मेरी माता के प्रयास के कारण पसीना निकल रहा है, तो भगवान मान गए बांधे जाने के लिए। वो जो 2 उंगलियां छोटी थी उनका संदेश क्या है, 1 उंगली के द्वारा ये संदेश है कि अगर समझना है तो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हो अपने प्रयास से नहीं। तो भगवान नारद मुनि ने नलकुबर मणिग्रीवा को श्राप दिया। श्राप ये था कि तुम पेड़ बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वो नंगे थे, वो महासंत वहाँ से गुजर कर जा रहे थे, और संत द्वारा श्राप भी हमारी भलाई के लिए होता है। तो नलकुबर मणिग्रीवा का भाग्य था, नारद मुनि ने क्या किया, उन्हें श्राप दे दी, तुम लोग इतने बेशरम हो, नंगे शरीर को नहीं ढक रहे तो मत जाओ पेड़, क्योंकि पेड़ भी नंगे रहते हैं। फिर उनको आदेश दिया था, श्राप दिया था, पेड़ बनोगे कहाँ, नंदराज के आंगन में। पर साथ में एक वर भी दिया था, क्या था वर, देव के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान अपने भक्तों के वरों को आदेश को सफल बनाते हैं। तो भगवान ने अपने उखल को दो भारी पेड़ों के बीच में रखा और उस उखल द्वारा खींचा। ये जो दो पेड़ थे इतने भारी थे कि इनको उठाने के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता थी, और एक छोटे बच्चे ने बड़ी सरलता से उस पेड़ को क्या किया, गिरा दिया, और उस पेड़ से निकले कौन, नंदकुमार और मणिग्रह। तो उन्होंने नारद मुनि का आभार प्रकट किया। उन्हें दर्शन प्राप्त हो रहा था भगवान का, पर नारद मुनि का आभार प्रकट किया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि की कृपा से उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा था। और यमुना अर्जुन इन दो पेड़ों ने परम भगवान का गुणगान किया। तो इन श्लोकों में भगवान के अनेक गुणों के विषय में चर्चा की जा रही है। और दसवें स्कंद में आप देखते हो कि परम भगवान शुरू से ही देवीय लीलाओं को प्रकट कर रहे थे। जैसे आप भागवत में पढ़ते हो, भगवान ने सबसे पहले कौन से राक्षसी का वध किया, पुतना, छोटे बच्चे के। जब भगवान ने मुंह खोला तो पूरे विश्व को दर्शन मिला, क्या पूरे विश्व का। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान जो है अद्वैता है, उनके देव आत्मा में कोई अंतर नहीं। अच्युता, कभी भी गलती नहीं करते। जैसे आज भी जो आप भगवद गीता पढ़ते हो, ये कितना प्राचीन संदेश है, तो जब पढ़ते आपको क्या लगता है, फ्रेश है। आपको कभी ये नहीं लगता आप कई बार सुन बैठे हो। और अनंत रूपम, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। अध्ययम पुराण पुरुषम नवी हो रमचा, भगवान जो है अध्ययम पुराना सबसे प्राचीन है। ही इज द ओल्डेस्ट बट ही लुक्स एवर यूथफुल। तो भगवान के अनेक गुण हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भगवान जो है पूरे सृष्टि के कंट्रोलर है। Somebody has to be the controller, वो है भगवान। कम बुद्धि के व्यक्ति कई बार सोचते हैं देवता नियंत्रित है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनाथ गोविंद। अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है, वो है उनके नियंत्रण। तो परम भगवान जो हैं पूरी सृष्टि के नियंत्रक हैं, और वो पूरे प्रकृति के कारण हैं। वो परमात्मा भी है, सुपर सोल। परमात्मा के रूप में भगवान के अनेक कार्य रहते हैं। एक है वो हर कार्य के साक्षी बनते हैं। कई बार बौद्धिकवादी व्यक्ति पूछते हैं कौन साक्षी बनता है हमारे कार्यों का। तुम वैष्णव भक्त कहते हो भगवान साक्षी है, कौन कौन साक्षी है। तो परम भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है। किस रूप में, परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये रजनते सति। तो परम भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, और इस स्थिति में उनके अनेक कार्य है। एक कार्य यह है कि हर कार्य के वो साक्षी बनते हैं, हर कार्य के, और कर्म के आधार पर हमें सुख दुख प्राप्त होता है। तो परम भगवान जो है हर चीज के कारण है और वो हर जीवात्मा के हृदय में है। आगे 32वें श्लोक में ये कहा जा रहा है, आप जो प्रकट हुए थे सृष्टि से भी पहले, द लॉर्ड अपीयर्ड इवन बिफोर द क्रिएशन, और इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, सर्व कारणा कारणम। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, आप ही सृष्टि के भी कारण हो। और ये समझने के लिए क्या आवश्यकता है, आध्यात्मिक तालेब। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता ने, सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु की रचना रूप गोस्वामी जी ने की थी। रूप और सनातन गोस्वामी दोनों एक समय एक मुसलमान राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर उनकी रुचि नहीं थी और चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को आध्यात्मिक शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि वृंदावन में जाओ, भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो, मंदिरों का निर्माण करो और उन स्थानों को खोजो जब भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि परम भगवान को समझने के लिए क्या आवश्यक है, भक्ति। भौतिक इंद्रियों द्वारा आप भगवान को नहीं समझ सकते और यहाँ भक्ति रसन सिंधु का बड़े प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग किया गया है, अथा श्री कृष्ण नमादि नाम भवेद ग्रेम इंद्रिया ही से वो मुखे जीव दो स्वयं वस प्रात। रूपा को समय कह रहे हैं अथा श्री कृष्ण नमादि नाम, परम भगवान को आप अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ सकते हो, नहीं समझ सकते, भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। जैसे विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं नई नई चीजों को खोजने के लिए तो कोई सफलता नहीं है, तो परम भगवान को आप भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो आप पूछोगे फिर कैसे हम समझ सकते हैं भगवान को, कैसे, से हो मुके ही जीवद हो। अगर आप सेवा के माध्यम में जुड़ोगे फिर आप भगवान को समझ पाओगे। तो यहाँ नलक और मणि की ये साबित कर रहे हैं कि परम भगवान जो हैं वो दिव्यम हैं, हर चीज के साक्षी बनते हैं और सृष्टि का कारण कौन है, परम भगवान है। पर इस भगवान को समझने के लिए आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। आप समझ सकते किस माध्यम से, वो मुख्य सेवा के द्वारा। और भगवतम का भी निर्णय क्या है, भक्ति योग। व्यासदेव ने सारे वेदों की रचना की थी, जब भी उन्हें लग रहा था मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है तो व्यासदेव विचार कर रहे थे क्या हो सकती है कमी। उन्होंने कहा कि चलो मेरे गुरु से पूछते हैं, और जब नारद मुनि से पूछा उन्होंने क्या कहा, तो मैं शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम दिया, गामा कल्प ग्रोर गलितम, ये वो पका हुआ फल है जो कि पेड़ की चोटी से नीचे आ रहा है और ये आ रहा है परंपरा के द्वारा। तो भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सकते हो। तो भक्ति योग का अर्थ क्या है, और यहाँ कहा जा रहा है भगवान के नाम गुण और रूप ये सारे क्या हैं? दिव्य है नाम, नाम नाम ने कृष्ण चेतना सर विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्ना तो हम नामा नाम नाम। तो कहा गया है अथाश कृष्ण नाम है, भगवान के जो नाम है ये दिव्यम है, भगवान के नाम उनमें कोई अंतर नहीं है। कई भौतिकवादी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये देखकर कि ये हरे कृष्ण वाले दिनरात हरि नाम करते हैं और थकते नहीं। क्यों नहीं थकते? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नामा चिंतामणि कृष्ण, और ज्ञान से या अज्ञान से जो भी भगवान के नामों का उच्चारण करेगा उसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। भागवतम के छठे स्कंद में आप आजीवन की कथा पढ़ते हो, और इस कथा में क्या देखते हो कि जब आजीवन ने नरेम पुकारा बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि क्योंकि यमदूत आए थे उन्हें नरक में ले जाने के लिए सजा के लिए, वहां तुरंत ही उन्होंने क्या पुकारा? नारायण। और पुकारते कौन पहुंच गए वहां? विष्णुदूत। तो विष्णुदूत ने रोक दिया यमदूतों को आज मेरे को नरक में जाने से। तो जो आज में जो जो देव यमराज थे उन्होंने भेजा था यमदूतों को, तो यमदूत गए वापस भगवान यमराज के पास। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है? क्योंकि ये पहली बार है जब आज जब यमराज ने यमदूतों को भेजा और वो नहीं आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो उन्होंने पूछा आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है? एनीवन मोर पावरफुल देन यू? बोले हाँ। तो फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई। हम गए थे यमराज के आदेश के अनुसार आज मेरे को नरक लाने के लिए, तो विष्णुदूत ने रोक दिया। तो यमराज ने क्या कहा? भविष्य में उनको नहीं छूना जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, जो भगवान के नाम लेते हैं। क्योंकि जो भगवान के नाम लेते हैं भगवान उनकी खास सुरक्षा करते हैं। तो भगवान के जो नाम हैं भगवान से अभिन्न हैं, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। भगवान के जो नाम हैं दे आर कंप्लीट बाय सेल्फ पूर्ण। दूसरे शब्दों में भगवान के नाम लेने के अलावा और कोई मंत्र के लेने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि हम बाहर से हरे कृष्णा का चैंटिंग करें और चुप चुप दूसरे मंत्रों का भी उच्चारण करें। हम सोचेंगे हरे नाम इज नॉट दैट पावरफुल, ये अपराध है, पांचवा नाम अपराध। तो भगवान के जो नाम है उनसे भिन्न है, पूर्ण कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, शुद्ध सबसे पवित्र है। भगवान के नाम आप कहां भी कर सकते हो। गौर केशवदास बाबा जी महान संत थे जिनकी केवल एक ही रुचि थी हरि नाम का उच्चारण। तो गौर केशवदास बाबा जी एक पब्लिक लैट्रिन में बैठकर अंदर से दरवाजा बंद करते थे, वो क्या करते थे? हरे नाम। क्योंकि उनकी इच्छा थी जो वो हरे नाम करें कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। तो भगवान के नाम है दे आर ऑल प्योर और मुक्ति दिला सकते हैं। तो यहाँ नल कौर मणिग्रीव कह रहे हैं आपके जो नाम है वो बिल्कुल दिव्यम है। यही नाम कहां से आ रहा है? करी करे नाम रूपा कृष्ण, कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा, और भगवान के नाम बिल्कुल अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया और सबको जोड़ा हरि नाम के साथ, तो भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो पर थकोगे नहीं। क्यों? तो भगवान के नाम आप सदा कैसे ले सकते हो? क्योंकि नाम हो भगवान में कुछ अंतर नहीं। तो हमारे में पूरा विश्वास रहना चाहिए कि हरि नाम के अलावा और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं, भगवत धाम लौटने के लिए। और हरि नाम जितना लो उतना ही कम है। तो भगवान के गुण, भगवान के अनेक गुण हैं, सब आध्यात्मिक है। अध्याय पुराना पुरुषम यौनम चार है, सबसे प्राचीन व्यक्ति और दिखते हैं सबसे युवक। और रूप उदाहरण के लिए भगवान प्रकट होते हैं उनके आचा विग्रह के रूप में। आचा विग्रह का क्या मतलब? भगवान का रूप, जैसे आप राधा प्यारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गोविंदाय के रूपों का दर्शन ले रहे हो। कम बुद्धि के लोग ये कहेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, पर जो भक्त है वो क्या जानता है, यह स्वयं भगवान है। और हमारे शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं जिसमें आप देखते हो किस प्रकार ये भगवान का आचार्य वगैरह का रूप लीला भी प्रकट करते हैं। जब माधवेंद्र पुरी गए थे यमुना में, उनकी इच्छा थी कि खीर चखी जाए उस मंदिर की। उस मंदिर में जो खीर बनती थी उसको कहते थे अमृत केरी। वो अपने भगवान को भोग लगा सके, पर भगवान ने क्या किया? माधवेंद्र पुरी की इच्छा थी खीर चखने का मौका मिले, पर वो इच्छा प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था, तो खाए बगैर चल पड़े बाजार में भगवान का नाम लेने गए। तो भगवान ने क्या किया? एक ही का प्यारा छुड़ा दिया। साक्षी गोपाल की कथा में हम पढ़ते हो कि जब धनी व्यक्ति के पुत्र ने कहा साक्षी है कोई कि तुम्हारे मेरे पिता ने यह वचन दिया था तुम्हें कि मेरी बहन का विवाह होगा तुम्हारे साथ, ब्राह्मण ने कहा है कौन? गोपाल विग्रह। वो हंसने लगा, वो मूर्ति देंगे। तो भगवान के जो नाम हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो रूप हैं, वो सब दिव्यम है। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्ति योग के द्वारा ही आप परम भगवान को समझ सकते हो। भक्तिया माम अभिजानते, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। तो यहाँ रूप भक्ति रसमृत सिंधु में प्रभुपाद ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा आप भगवान को कभी समझ नहीं सकोगे, पर सेवा के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोजन, तो मुझे जल का प्याला अर्पण करो, तुलसी का पत्ता दो, फूल दो, फल दो, मैं स्वीकार करूंगा। પણ એક શરત, વન ક્વોલિફિકેશન. ઓકે, આ મોર ધેન વન ક્વોલિફિકેશન. પરંતુ એમ યો મેં ભક્તિયા પ્રેમ કે માધ્યમ સે. તો એ શ્લોક એ તાત્પર્ય મેં પ્રભુજી હમે સમજા રહે હૈ કે ભક્તિ યોગ કે દ્વારા હી આપને આપકો પવિત્ર બના સકતે હો. ઓર ભગવાન કો સમજે કે યોગ્યતા નિર્ભર હૈ આપકે પ્રયાસ કે ઉપર. તો ભક્તિ યોગ કા અર્થ ક્યા? ભક્તિ યોગ કા અર્થ હૈ પ્રેમ કે સાથ ભગવાન કી સેવા કરના. ભગવાન કે અનેક નામ હૈ, જેનમે એક નામ હૈ ઋષિકેશ. ઋષિકેશ કા ક્યા અર્થ હૈ? ઇન્દ્રિયો કે સ્વામે. તો હમારે શાસ્ત્રો મેં અનેક ઉદાહરણ હૈ યે સ્થાપિત કરને કે લિયે કિસ પ્રકાર ઇન્દ્રિયો કા ઉપયોગ કરના ચાહિએ ઓર ઇન્દ્રિયો કે વિષય મેં શાસ્ત્રો મેં ક્યા પઢતે હો. ઇન્દ્રિયો કા આપ સંતોષ કર સકતે હો કબ? કેવલ અગર આપ ભક્તિ મેં ઉનકા ઉપયોગ કરો. યે હૈ સેવા. સેવા આરંભ હોતી હૈ કિસ કે સાથ? જીવ કે સાથ. આપ દેખતે હો કે હમારે ઇસ્કોન કે ભક્ત વો સંસ્કૃત કે વિદ્વાન નહીં હૈ, પર વો જુડે હૈ સેવા સે. સેવા મેં જુડને કે કારણ ઉનકા જ્ઞાન બઢ ગયા હૈ. કઈ બાર લોગ પૂછતે થે પ્રભુ સે, આપ કોઈ જાદુ કર સકતે હો? પ્રભુ ને કહા, નહીં, મેં તો કોઈ જાદુ નહીં કર સકતા, પણ એક જાદુ મેને કિયા હૈ. તો ઉસ વ્યક્તિ મેં બડા ઉત્સાહ થા, ક્યા? મેને હજારો મ્લેચ્છો કો બ્રાહ્મણ બના દિયા હૈ. મ્લેચ્છ મેને મ્લેચ્છ ઉસે કહેતે હૈ જો કે બચપન સે પાપ કે કાર્ય મેં જોડા હૈ. તો મ્લેચ્છો કો બ્રાહ્મણ બનાના કોઈ છોટા જાદુ નહીં હૈ. તો ભક્તિ યોગ એક એસી શક્તિ હૈ જિસકે માધ્યમ સે શુદ્ધ ઇન્દ્રિયાં શુદ્ધ બન જાતી હૈ. ઓર યે ભક્તિ યોગ આરંભ કૈસે હોતા હૈ? શ્રવણમ કીર્તનમ. આપ નવદા ભક્તિ કે વિષય મેં પઢતે હો. પ્રહલાદ મહારાજ કો નારદ મુનિ ને શિક્ષા દી થી. પ્રહલાદ મહારાજ કે પિતા જબ મંડાળા પર્વત મેં તપસ્યા ઉઠા રહે થે, પ્રહલાદ માતા કે ઘર મેં થે, ઇન્દ્ર ઓર દેવતા આગે દુખી હો ગયે થે હિરણ્યકશિપુ કી તપસ્યા સે. તો દેવતાઓને કહા, અબ હિરણ્યકશિપુ કી પત્ની કે ઘર મેં એક ઉલાદ હૈ, તો હમ પ્રહલાદ કી માં કો ઘસીટ કે લે જા રહે થે ઇસ ભાવ કે સાથ કે બચ્ચા પેદા હોતે હી ઉને માર દિયા જાયેગા, ક્યોંકિ જૈસે કહેતે ના જૈસા બાપ વૈસે બેઠા. તો દેવતાઓ કો ચિંતા થી, જૈસા બાપ હૈ બેટા ભી વૈસા નિકલેગા. તો નારદ મુનિ પહોંચે, ઉન્હોને કહા, નહીં, ઇસ ઔરત કે ઘર મેં ક્યા હૈ? એક સંત હૈ, તુમ ઉસે માર નહીં સકોગે. તો નારદ મુનિ ને નવદા ભક્તિ કા જ્ઞાન દિયા. શરણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પારસેનમ આશ્રમ દસ્યમ સખ્યમ. તો ભક્તિ યોગ આરંભ હોતા હૈ કિસ કે સાથ? શ્રવણમ ઓર કીર્તનમ. યે જાપ કરના, જાપ સુનના, ભગવાન કા નામ લેના, ભગવાન કા નામ સુનના. પ્રભુજી અમેરિકા ગયે થે જૈસે આપ જાનતે હો, કેવલ 40 રૂપિયે કે સાથ. ઓર ઉન્હોને ઉન લોગો કો જોડા જો હર પ્રકાર કે બુરે કામ મેં જુડે હુએ થે. કૈસે જોડા? એ હરિ નામ કે માધ્યમ સે. યે કલયુગ કા યે મંત્ર હૈ. તો શરણમ કીર્તનમ હમ કરેંગે તો ઉસકે દ્વારા ક્યા લાભ હોગા? तो दर्पण महाजनम बाबा माँ द्वाग्नि बाबा, हमारे हृदय की जो मैल है, मैल के द्वारा क्या संदेश आता है? काम क्रोधो मोह मद मत्सर, ये है अनर्थ। इनके प्रभाव के कारण हम भगवान की शरणागत नहीं हो पाते। तो अगर हमने माया के आकर्षण से बचना है तो क्या उपाय है? शरणम कृतम देवेश गुण माय मम माया दुर्दया। फिर माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरे शरणागत होता है वो इसका विरोध कर सकता है। तो भक्ति योग के माध्यम से हमारा अशुद्ध हृदय मन शुद्ध बनता है, और ये भक्ति योग जो साधन है इसका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, वहाँ उन्होंने जानवरों को भी नचाया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जब गए प्रचार में, उन्होंने उन लोगों को जोड़ा जो कि शुरू से जुड़े हुए थे गलत कार्य में, और क्या था माध्यम? हरिनाम। तो ये हरिनाम का क्या लाभ है? एक लाभ ये है जो बहुत एक मैल है वो दूर होती है। आप सबका अभ्यास होगा कि जब आप नियमित रूप से जप करते हो, चाहे मंदिर में हो या घर में हो, तो आपका आध्यात्मिक उत्साह बहुत ऊंचा रहता है। और जब आप जप इत्यादि ठीक नहीं कर पाते तो क्या परिणाम होता है? वहाँ आध्यात्मिक आकर्षण घट जाता है और भौतिक आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर ध्यानपूर्वक जाप लोगे तो उसका गहरा असर पड़ेगा। रूपक सभी कहते हैं भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, ये सब मीठे हैं, पर मीठा वन नहीं महसूस कर सकते। इस किस कारण? बौद्धिक आकर्षण के कारण। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते थे, आपको जॉइंटेड बीमारी होती है तो कोई कितना भी मीठा रस दे आप महसूस नहीं कर सकोगे। तो हमारे इंद्रियों में माया का गहरा आकर्षण है, और इसका विरोध करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? हरिनाम, भक्ति योग। भक्ति योग आरंभ होता है जीभ के साथ, और इस जीभ का हमें उपयोग करना चाहिए किस लिए? श्रवणम कीर्तनम के लिए और कृष्ण प्रसाद। रूपक गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार वेगम। ये जो वाणी है, जीभ है, इसको वश में रखना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए केवल दो कार्यों के लिए, भगवान का गुणगान और कृष्ण प्रसाद और कृष्ण प्रसाद। और अगर हम हरिनाम करेंगे तो हृदय की मैल दूर होगी। इस कलयुग में हृदय की मैल को दूर करना इतना आसान नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु पतित भगवान हेतु तवावतारा मोह समा पतित प्रभु लंबाई व्यवहार। चैतन्य महाप्रभु को के विषय में क्या कहा गया? सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार है, और वो प्रकट हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना, नेत्र द्वारा भगवान का दर्शन, वाणी द्वारा भगवान का गुणगान, और जीभ द्वारा कृष्ण प्रसाद और हरिनाम। और इस प्रकार आप इंद्रियों को शुद्ध उपयोग कर सकोगे। इंद्रियों का उपयोग होना ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम उन्हें भक्ति योग में नहीं जोड़ेंगे इंद्रिया क्या कहाँ ले जाएंगे आपको, नारायण की तरफ। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया जाता है पशुओं का, किस प्रकार उनका अंत आता है। उदाहरण के लिए मछली जो है उसको अगर कोई पकड़ना चाहे तो क्या लगाता है खान और जब मछली देखती है ओ कुछ खाने के लिए मिल रहा है, मछली वहां जाती है तो क्या आता है, फंस जाती है। हाथी, हाथी को पकड़ना आसान है, बहुत मुश्किल है। तो ये जो ट्रेनर हैं क्या करते हैं, बड़ा खड्डा खोद देते हैं, उसको ढक देते हैं घास के साथ, और जो शिया हाथी है वो ही हाथी के पीछे जाती है, और नहीं जो ही हाथी है पीछे जाता है शिया हाथी के और खड्डे में गिर जाता है। और पतंगा जो है, पतंगा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। पतंगा का आकर्षण क्या है, रोशनी लाइट की तरफ। रात के समय जब आप बत्ती जलाते हो पतंगा कहता है आह अब मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, तो पतंगा ऊपर जाता है बत्ती के पास और उसके तेज प्रकाश से जल जाता है। और हिरण जो है उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है, पर शिकारी एक खास धुन बजाता है जिसके बजाने से जो डियर है रुकता है हिरण। ये आवाज कहाँ से आ रही है, इतने में वो शिकारी क्या करता है, गोली लगा देता है। तो श्रीमद् भगवतम में ये उदाहरण दिए गए हैं इसलिए ये दिखाने के लिए कि जो पशु हैं उनमें एक इंद्रिय प्रसिद्ध रहती है और उसको संतुष्ट करने के माध्यम से क्या परिणाम होता है, वो जो जानवर है जल जाता है। तो भगवत में कहा गया है उसी प्रकार मानव देह प्राप्त करने पर अगर हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जोड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा, वो सब हमारा भी अंत आ जाएगा। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, और ये उत्साह कि इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में, ये आरंभ हो, ये प्राप्त होता है भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा। रूल्स एंड रेगुलेशन, भक्ति योग में अनेक विधियाँ हैं, जैसे कि अथाच कृष्णा न मानिना, ये श्लोक है भक्ति रस अमृत सिद्ध है। प्रभुपाद जी ने कहा ये जो भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ है, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, जो भक्ति के कानून हैं, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये सारी शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है इन ग्रंथों में। तो शुद्ध भक्ति योग प्राप्त होता है कैसे, शरणम कृतनम के माध्यम से। तो यहाँ ये उपदेश दिया जा रहा है, नल कुंवर और मणिग्रीव कह रहे हैं हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ किसकी कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संगत सर्वशास्त्र काया लाव माता साधु संगत। ये जो दो नलुकर मणिग्रीव थे उन्हें ये शिक्षा कैसे प्राप्त हुए, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो इसका कारण क्या था, नारद मुनि की कृपा। नारद मुनि ने देखा ये इतने घेरे शराब के नशे में है कि कोई ये बुद्धि नहीं कि संत के सामने कैसे व्यवहार होना चाहिए, तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। तो साधु संग में रहोगे तो सदा शुद्ध संदेश प्राप्त करोगे, साधु संग में रहोगे तो सरलता के साथ माया का विरोध कर सकोगे, इसलिए साधु संग बहुत आवश्यक है। आजकल ऑनलाइन प्रीचिंग बहुत बढ़ गई है ना, सभी ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रीचिंग का लाभ है, सरल है, पर साथ में कमी एक ये है, हम सोचते हैं सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हम घर ही घर में कर लेंगे, उसका लाभ है, पर देयर इज नॉट अ रिप्लेस पर वो साधु संग। मंदिर आपको जब भी आना चाहिए, मंदिर आते हो तो क्या लाभ है, भगवान के विग्रह का दर्शन, उपदेश प्राप्त होता है और भक्तों की संगत प्राप्त होती है। तो साधु संगत, चैतन्य महाप्रभु ने पांच महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया, सबसे पहले क्या था, साधु संगत। तो साधु संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। फिर नाम कीर्तन, हरि नाम का, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना और धाम से। तो इन श्लोकों में नल कर्ण मणिग्रीव नारद मुनि का भार प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज जो हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है वो किसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, नारद मुनि की कृपा से। और आगे जाकर उन्होंने कहा अब से हम हमेशा हमारे इंद्रियों का उपयोग करेंगे, किस लिए, भगवान के सेवा में। तो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, आप इन दसवें स्कंद में भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। और साधारण व्यक्ति कहेगा भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन दे दिया, असंभव है, और जो भक्त है वो जानता है भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, किसी एक अंग से किसी एक अंग का कार्य कर सकते हैं। ये जो दो पेड़ नल करो मनी की वन गिराए, बहुत भारी पेड़ थे, उन्हें गिराने के लिए हजारों व्यक्तियों का सहयोग की आवश्यकता थी, पर छोटे बच्चे ने दो पेड़ों को गिरा दिया। जब वो पेड़ गिरे इतनी भारी आवाज हुई कि सब घबरा गए, सबने पूछा क्या है क्या है, ये आवाज कहां से आई, ओ ये पेड़ गिरे हुए है, किसने गिराए। और जो ग्वाले थे उन्होंने कहा ये पेड़ आपके बेटे ने गिराए। फिर उन्होंने क्या कहा, हमारा बेटा वो इतना छोटा है, इन पेड़ों को गिराने के लिए हजारों आदमियों की सेना चाहिए, छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है। तो ये था भगवान की अद्भुत लीला। तो परम भगवान जो है उनकी जो लीला है अद्भुत है। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना है, अशुद्ध मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। आप स्कॉलर बन जाओ, विद्वान बन जाओ, भगवान को नहीं समझ सकोगे, पर अगर आप सेवा में लगा रहे हो फिर समझ सकोगे। तो सेवा है सबसे आवश्यक। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति योग इज द मीडियम थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड। तो भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और जैसे हमने कहा कुछ समय पहले, भक्ति योग का पालन के लिए भौतिक धन की आवश्यकता नहीं, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं, कोई संस्कृत के पंडित बनने की आवश्यकता नहीं, केवल सेवोम के ही जीवन, सेवा के मन आप भगवान को समझ सकोगे। तो ये है आज के श्लोकों का संदेश। भगवान सृष्टि के कारण है, सृष्टि के प्रकट होने से पहले भगवान प्रकट हो गए थे, और भगवान क्या है, हर चीज के कारण है, आदि पुरुष भगवान हर चीज के कारण है, और जो देवता देवी हैं वो भी परम भगवान के अधीन है। और ये समझने के लिए क्या आवश्यकता है, भक्ति योग। और श्रीमद् भागवत का निर्णय क्या है, भक्ति योग। भगवद गीता का निर्णय क्या है, भक्ति योग। सो वैदिक शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्ति योग। और भक्ति योग का अर्थ है जीव वाणी और अनेक इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में, और प्रयास करेंगे तो भगवान सफलता देंगे। तो भक्ति योग के द्वारा जो व्यक्ति ने हृदय की मैल को दूर कर लिया है वो ही भगवान के दिव्य रूप को समझ सकता है। हम भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। सो वी नीड टू प्रैक्टिस भक्ति योग, देन यू कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्णा। हमें जाना है किधर? कोई प्रश्न है किसका? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ पूछिए।
हरे कृष्ण महाराज जी।
क्विकली
महाराज जी, आपने लेक्चर में बोला था कि नल कुंभेर और मदि गुरु जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वो नारद मुनि को थैंक करते हैं, लाइक ही थैंक्स नारद मुनि, बोथ थैंक्स नारद मुनि, सो दे हैव फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वी सी इन डिवोशनल लाइफ दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एज समबडी प्रोग्रेसेस इट रिड्यूसेस।
नल कुंभेर मदि ग्रीव व्हेन दे सॉ द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड दे रिकॉग्नाइज इंस्टेंटली that this has become possible due to the causeless mercy of Narada Muni. So they first of all express their gratitude to Narada Muni for having this fortune. What's your question?
That how we can maintain this and continue this gratitude. It reduces.
Okay, follow. Very often when we new devotees, we feel the gratitude, and when we become old devotees, we forget it. In English there's a saying, familiarity breeds contempt. If you're with somebody all the time, then you tend to give up etiquette. So we should always be grateful to the guru and the sadhu for giving us transcendental instructions. But that is only possible if we are also practicing devotional service. The moment you give up practicing devotional service, you forget Vaishnava etiquette. Okay, Prashant? I only have 10 minutes. So.
प्रश्न पूछा है महाराज इन्होंने कि जब हम सेवा करते हैं तब हमें माया का प्रभाव नहीं होगा, पर जब हम अपने भौतिक कार्य करते हैं तब माया का प्रभाव होने लगता है, तो कैसे स्थिर रहे, स्टेबल कैसे बने?
तो भौतिक कार्य में नहीं रहो। तो भौतिक कार्य से उनका मतलब है जब हम जॉब करते हैं, अगर आप माला का जाप कर रहे हो और चैंटिंग कर रहे हो और नियमों का पालन, फिर ये संभव है कि आप भक्ति के रास्ते से विचलित नहीं होगे। और अगर भक्ति के रास्ते में दृढ़ होकर जुड़े हुए हो फिर हमेशा आपके अच्छे विचार रहेंगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस
महाराज जी, आपने अभी जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उदाहरण दिया कि किस प्रकार वो जप में इतनी रुचि थी उनकी, और अभी हमें हर समय हर प्रवचन में जप के बारे में बताते हैं, तो मेरा एक प्रैक्टिकल प्रश्न ये था कि अनइंटरप्टेड चैंटिंग का एक अपना ही प्रभाव होता है, लेकिन कई बार जब हम सुबह सुबह जब करने बैठते हैं मंदिर में भी तुलसी आरती के बाद, तो कई बार कोई फोन आता है वरिष्ठों का या कुछ सेवा के लिए, तो मैंने सुना था एक वरिष्ठ भक्त से आपके बारे में कि आप जब जब करते थे और बीच में अगर कोई भक्त आ जाता था तो चाहे दो महामंत्र बचाओ माला पूरा करने में आप वो माला छोड़ देते थे, और फिर से नई माला करते थे, उसको 16 में नहीं गिनते थे। तो हम ऐसा करते नहीं अभी, तो अगर हम ऐसा करने लगे तो
नहीं, थोड़ा प्रभुपाद जी कहते थे मॉर्निंग आवर्स इवनिंग आवर्स, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जब श्रवण कीर्तन जैसे मंगलात के बाद मंदिर में बैठ के चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग करो, और द बिगेस्ट डिस्टर्बेंस इज द सेल फोन, तो उसको बंद रखो या रिकॉर्ड मैसेजेस। कई भक्त हैं जिनका ये नियम रहता है कि सुबह के वक्त किसी चीज में नहीं जुड़ना, पर एक्सेप्शनल कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, पर एज अ रूल हमें ये नियम बनाना चाहिए सुबह के समय हमने केवल साधना भक्ति करना है। पर कई बार जो मैनेजर होते हैं उनकी इंटरप्शन होती रहती है। ओके
हरे कृष्ण महाराज, दंडोत प्रणाम। मेरे दो सवाल है, और सबसे पहला ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि भगवान स्वयं करुणा के सागर है, दया के सिंधु है, उनके हर नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी राम में है, जितनी कृष्ण में है, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद हम कृष्ण इस नाम पे या फिर हरे कृष्ण इस नाम पे इतना मतलब हरे कृष्ण नाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो क्यों? और दूसरा प्रश्न
समझे हरे कृष्ण मंत्र इज अ स्पेशल मंत्र फॉर दिस एज ऑफ कलि, जैसे कि हर बीमारी का अलग इलाज होता है, तो इस कलयुग में हजारों मंत्र हैं, पर खास करके हरे कृष्ण मंत्र को इस कलयुग का मंत्र माना जाता है। इसलिए आप देखते हो जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया लोगों ने सारे विश्व में इसे स्वीकार किया, और आप अभ्यास कर सकते हो ये हरि नाम के माध्यम से जो भौतिक महल है वो आसानी से धुल जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति भक्ति योग कर्म है, कार्य है या स्वयं साध्य है?
भक्ति साधन है और हमारा लक्ष्य भी है। दूसरे शब्दों में भक्ति योग कैसे करोगे? भक्ति योग का मतलब है इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में, जैसे कि जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करो। तो भक्ति योग हमारा लक्ष्य है, और उनको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग के जो विधियां हैं, रूल्स हैं, उनका पालन करो। उनका पालन करोगे तो इसका इलाज तेज होगा।
धन्यवाद, अपराध क्षमा हो।
हाँ हो गया। ओके
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आजकल ऑनलाइन जो प्रीचिंग हो रहा है तो उसके माध्यम से जो साधु संघ है डायरेक्ट टेम्पल में वो पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे मंथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं अलग अलग जगह से, तो अपनी अपनी व्यवस्था बिजी है अपनी लाइफ में और दूर भी हैं, तो इसके वजह से नहीं आ पाते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दे सकते हैं कि क्या योजना कर सकते हैं कैसे?
ज्यादा से ज्यादा लाभ किसको?
जो हमसे पुस्तक लिए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो ऑनलाइन ही जुड़े हैं, मंदिर बुलाना वगैरह या तो अपने लाइफ में बिजी है या तो यहाँ से बहुत दूरी पे हैं, तो नहीं आ पाते हैं।
कई लोग जब ग्रंथों को बांटते हैं, जिनको बांट रहे हैं वो उनका पता या फोन नंबर भी लेते हैं, और आजकल तो सबके पास फोन है। एक जमाना था हिंदुस्तान में फोन मिलने के लिए 20 साल लाइन में खड़ा होना पड़ता था. तो सबके जेब में 3-4 फोन है, तो फोन नंबर दो, उसे फॉलो अप करो. किताबों को बांटना महत्वपूर्ण है, पर हमें ऐसे बांटना चाहिए कि हम फॉलो अप भी कर सकें. तो फॉलो अप करने में ज्यादा फायदा होता है.
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि फॉलो अप तो करते हैं, लेकिन वो या तो यहाँ से बहुत दूरी पे है मंदिर से, या तो बहुत ज्यादा बिजी है तो आ नहीं पाते हैं.
पर्सनल तो टेलीफोन से करो, टेलीफोन से आप पूरे भारत में पहुंच सकते हो, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हो. जैसे कई बार ये ऑनलाइन कोर्सेज अभी जो शुरू हुई थी, कई लोग जुड़े जो विदेश के लोग थे, और उन्होंने प्रचार के द्वारा विदेशों में जाकर भगवत धर्म खरीदा. ओके, यस 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 माता जी. You need a mic.
I'm really obliged to actually meet you in front. It's really too much for me. Okay, I just have one question. Our senses, like we smell, we taste, okay? We take Harinam. Of course we take Harinam. But at times, the front person, like example, we work. Okay, we work. And there are people who talk really bad about us. I mean, at that point in time, we are not able to hold back our feelings. You know, at times we say something which that front person may get angry.
Okay,
though
okay.
We are in.
So let's say somebody criticizes you.
Yes.
So tolerate it. It's another piece of the chain. We don't believe in doing tit for tat. You know what's tit for tat? Nera padera. वो आलोचना कर रहा है तो हम भी करेंगे. वी टॉलरेट इट एंड वी कीप प्रीचिंग हर मैसेज. इवन लॉर्ड नित्यानंदा एंड हरिदास, व्हेन दे वेंट प्रीचिंग, मेनी पीपल क्रिटिसाइज देम. सो टू एनकाउंटर क्रिटिसिज्म इज नथिंग न्यू.
ओके गुरु महाराज.
यस, ओवर देयर.
Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam.
Yeah.
Guru Maharaj, at night when we are sleeping, and if the Kirtan is on, is the soul still doing Shravanam? Is the heart getting cleansed?
Yes.
Thank you.
But that doesn't mean you don't do Japa in the morning. The epigora will play, but you still have to do Japa in the morning. Okay. I have to. I have 2 or 3 questions I have to leave. I have a Zoom conference. Yeah. Yes, yes, quickly.
Hare Krishna Guru Maharaj. महाराज, जैसे हम लोग कई बार सेवा करते हैं आपस में, जैसे अभी मैराथन का सेवा था, तो उसमें क्या होता है भक्तों के बीच में कई बार चीज़ों को मैनेज करते वक्त थोड़ा सा वर्बल फाइटिंग जैसा होता है, तो फिर कई बार क्या होता है हम किसी भक्त का के साथ जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरे भक्त के प्रति निकालते हैं, निंदा करते हैं, और उसमें फिर जब हमको कोई बोलता है कि निंदा क्यों कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि ये तो मैं, मेरा इंटेंशन सही है, ये तो मैं बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ उसका निंदा करके. क्या ये सही है? इसमें हमको कैसे बचना चाहिए?
आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ये अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु को पता था ये सब कमियां हम देखेंगे कलयुग में, इसलिए महाप्रभु ने कहा अगर आप चाहते हो कि कीर्तन सदा करते रहो तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा. तो मान लो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है बिना कारण के, फिर उसको सह लो. वो क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि आप में कोई कमी है, तो आपको उसका आभार प्रकट करना चाहिए, समझे। अक्सर हमारी उम्मीद ये होती है सबको हमारी तारीफ करनी चाहिए, और कई बार जब आपके सीनियर्स आपको कोई कमियों के विषय में सुनाते हैं तो हम एकदम गुस्से हो जाते हैं, ऐसा है द्वेष है। पर अगर हमारे सुधार के लिए कोई कोई शिक्षा दे रहा है तो वी शुड बी एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेड। ओके, यस,
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप प्रत्येक लेक्चर में बताते हैं कि हमको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, आज भी हरिनाम के ऊपर बता रहे थे आप, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं सुबह जप करने बैठता हूँ तो पहली माला में नींद आ जाती है और कंटिन्यूसली नींद आती रहती है, तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हम उसको कैसे रुचि डेवलप कर पाएंगे।
आपको ज्यादा विश्राम की आवश्यकता है तो थोड़ा ज्यादा विश्राम कर लो, पर जप के समय जागे रहो, अपने साथ वाटर स्प्रिंकलर रखा करो, तो कई भक्त ऐसे करते हैं, ओके, लास्ट क्वेश्चन है कौन?
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जब हम सेवा करते हैं और हमारे पास ऐसी सेवा है कि जिसमें बहुत ज्यादा माया का प्रभाव है और हम बार बार उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उस सेवा में लेकिन हमें वो सेवा करना ही है।
तो आपका प्रश्न है, सेवा है जैसे माया का बहुत
ज्यादा प्रभाव है,
कैसे? उदाहरण,
मतलब हम इंटरनेट पे सेवा करते हैं बार बार, तो हमें उसमें
इंटरनेट जो है उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग का मतलब है अंदर आपने भागवतम प्रपद के ग्रंथों को रखा है, कीर्तन रखा है इत्यादि, और दुरुपयोग का अर्थ है आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो। तो हर चीज का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो हमें भक्ति में इतने गहराई से जुड़ना चाहिए कि हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। द इंटरनेट इज अ मिक्स ब्लेसिंग। मैं एक टेलीफोन कंपनी के बड़े अधिकारी से चर्चा कर रहा था दो हफ्ते पहले, तो वो मुझे कह रहा था 95% ऑफ इंटरनेट इज पोर्नोग्राफी, 95%, एंड ओनली 5% व्हाट पीपल यूज इज फॉर एनीथिंग प्रोडक्टिव, 95% इज पोर्नोग्राफी। उन्होंने स्टडी की थी, सो 95% इंटरनेट की आमदन है पोर्नोग्राफी। सो वी शुड बी केयरफुल, और अगर अच्छी साधना रखोगे, श्रम कितना करोगे, फिर उससे बचोगे। माया तो हर कदम पर है, इंटरनेट, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो वहां माया का पूरा दर्शन मिलता है आपको, है कि नहीं? आप ये थोड़ी कह सकते हो, ओके, ब्रह्मचारी आर कमिंग और द लेडी शुक्राम गो रन बिहाइंड। तो आपको जब आप प्रचार में जाते हो माया के कई प्रतिनिधि रास्ते में मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है नियम? साधना अच्छी रखो, जाप करो सुबह के समय, शास्त्र पढ़ो, तो आपको शक्ति आएगी माया का विरोध करने के लिए। ओके,
थैंक यू महाराज।
आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन गो। यस, आई हैव टू टेक पार्ट इन अ मीटिंग एट 10 o'clock। ओके,
हरे गुरु कृष्ण गुरु महाराज जी।
I'm sorry,
या
Maharaj, in business world, sometimes we have to do some unethical thing, forcibly, unknowingly or knowingly, but our ethics are, not allowable to do it. What should we do?
It all depends what you're talking about.
Yeah.
If it is minor deviation or major deviation. Ethics is a very broad subject. So, like a lawyer, we have many devotee lawyers also. But usually a lawyer has to. If a lawyer speaks only the truth, he'll be out of business.
Yeah.
So he has to. So it all depends on what you're talking about. Ethics is a very broad subject.
Thank you. Thank you.
Yes. Any more? Okay.
Krishna Maharaji. Maharaj ji, jab hum koi seva karte hain book distribution ya temple mein, to hum andar se andar sochte hain ki humko koi recognize kare, koi prashansa kare aisa. So, aisa matlab theek hai ya?
Hum ye ummeed nahi karte कि जैसे आप जुड़ोगे इस कौन के साथ तुरंत ईश्वर भक्त बन जाओगे. तो अगर आपके मन में यह भाव आता है, हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम चाहते हैं कि लोग हमारा नाम सुने, ठीक है, प्रयास करो. आपका लॉन्ग टर्म गोल है शुद्ध भक्ति के को प्राप्त करने के लिए, पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मंदिर आते ही आप शुद्ध भक्त बन जाओगे. ओके, सो थैंक यू. आप में से किन किन ने बुक मैराथन में सहयोग दिया था? हिंदुस्तान में मैं देखता हूं कि गीता जयंती के महीने में तो भक्तों का बड़ा उत्साह रहता है, पर उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं अगले साल के लिए. पर माया का मैराथन कितने महीने चलता है? 12. तो आपके माया से कमजोर हो, आपका मैराथन भी 12 महीने चलना चाहिए. 12 महीने हमारे में उत्साह होना चाहिए प्रचार का. और ज्यादा दागोताय कहो, यह हमारे यहाँ लक्ष्य रहना चाहिए 12 महीने के लिए. ये नहीं कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है, माया से लोगों को बचाना है ना. अगर आप माया को बोलो 11 महीने तुम छुट्टी करना, हम भी छुट्टी करेंगे. माया तो प्रयास करते जाएगी. सो वी शुड कंसिडर टीचिंग एज अ फुल टाइम एक्टिविटी 365 डेज, नॉट जस्ट वन मंथ अ ईयर. पार्ट टाइम प्रीचिंग करो अगर फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, बट कीप द प्रीचिंग स्पिरिट. ओके,
प्रभु जी.
हाँ
महाराज जी. या या
हाँ
महाराज जी, वन क्वेश्चन. हाउ टू गेट इनफ स्ट्रेंथ टू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स?
चैंटिंग इज अ की टू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. चैंटिंग अराउंड, स्पेशली इफ यू चैंट in the morning hours, you chant attentively. This chanting alone can give you all the strength you need. But we don't compromise on chanting. Chanting and hearing. Okay?
So, Hare Krishna.
Where is that from? We'll stop over here now. I will give afternoon lecture, Meena Road. Parma Jaya Shri Krishna Samkirtan. Hare Krishna. Para
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।